रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। वक्त है कुछ खास बातें करने का आप ही के जीवन से जुड़ी हुई लेकिन कानूनी पहलुओं के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर। अब ये खास टॉपिक कौन सा है ये तो हमारे एक्सपर्ट गेस्ट ही बताएंगे। हमारे साथ फिलहाल हर हफ्ते की तरह स्टूडियो मौजूद है एडवोकेट मोहित भंडारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
थैंक यू।
तो मोहित जी बहुत सी बातें हम हर हफ्ते आपके साथ शेयर करते हैं, आप हमें बताते हैं कुछ खास कानून के अलग अलग पहलुओं के बारे में, तो क्या है आज का टॉपिक, यही है पहला सवाल।
आज मेरा मन तो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के बारे में बात करने का है।
तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी अलाउंस पर। सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है क्या? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं इसमें समाज से जुड़ी हुई कुछ बात हो रही है। तो अब क्या है सोशल सिक्योरिटी अलाउंस और इसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है एडवोकेट मोहित भंडारी जी। मोहित जी सबसे पहला यही सवाल है, क्या कहना चाहते हैं आप सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के बारे में?
देखिए मेरी ये मान्यता है कि कोई भी बच्चे 18 साल की उम्र से पहले अगर अनाथ हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स नहीं रहते, तो हमारी जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी जो हमारा राष्ट्र है, हमारे को देश की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से ऐसे बच्चों को 3,500 पर चाइल्ड सोशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलना चाहिए। इसी तरह से 18 से लेकर 58 वर्ष की जो आयु अवधि है उसमें किसी भी तरह से कोई काम करने वाले व्यक्ति की, नागरिक की इनवैलिडेशन हो जाती है, पार्टली कोई डिसेबलमेंट हो जाती है और उनको किसी तरह की, उनके पास कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
हाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो स्टेट को इमीडिएट इंटरवीन करना चाहिए और उनको सोशल सिक्योरिटी अलाउंस 3,500 मिनिमम अपनी सस्टेन पर पर्सन अवश्य दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से 58 साल की उम्र के पश्चात जिन लोगों की सर्विसेज पेंशनेबल नहीं हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनको पेंशन्स का प्रावधान कहीं है, बहुत कम है और कहीं नहीं है, और अगर पेंशन अगर है तो बहुत कम मात्रा में पेंशन है, 500 कहीं देखा गया, कहीं 1,000, कहीं 15 और मैक्सिमम 2,000 का प्रावधान है, तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी अलाउंस को हमें इमीडिएटली बिसाइड्स दी जो उनको पेंशन मिलती है, वो तो उनकी अपनी सर्विस की एवज में है, और सोशल सिक्योरिटी अलाउंस उनको 58 वर्ष की आयु के पश्चात मिलना चाहिए।
जी जी बिल्कुल, यानी सोशल सिक्योरिटी अलाउंस एक ऐसा अलाउंस जो उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको वाकई फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है, जिनके पास ना ही कोई सहारा है और ना ही सहारे की उम्मीद दिखाई दे रही है। मोहित जी सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के बारे में आप बात कर रही हैं, ये एक ऐसा अलाउंस है जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, अभी तक जनता को नहीं दिया गया है, लेकिन इसके आने से आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें वाकई कहीं ना कहीं पैसे की तंगी आती है, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, चाहे वो उसमें आप ऑर्फन बच्चे ले लीजिए या फिर बुजुर्ग ले लीजिए का कोई सहारा नहीं है। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या वाकई इसकी जरूरत है या इसके बिना काम चल जाते हैं, इसकी जरूरत इतनी ज्यादा आपको क्यों लग रही है?
देखिए हमारे संविधान में धारा अनुच्छेद 21 के अनुसार के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया गया है कि सबको जीवन का अधिकार है, और हमारे जो वेदास हैं उसमें 100 वर्ष की आयु की कंटेम्पलेशन है, जीवें शरदा शतम, इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें या धार्मिक और वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया में इस समय एवरेज एज जो है मेल्स की 63 है और फीमेल्स की 67, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ समय पहले आंकड़ों के मुताबिक ऐसी एज दर्शाई गई है, और उसमें ये भी फ्रंट पेज के न्यूज़ में था कि लास्ट के जो 10 इयर्स होते हैं 53 इयर्स ऑनवर्ड्स और फीमेल्स में 57 इयर्स ऑनवर्ड्स, वो एक तरह से घसीट घसीट के जिंदगी जीने वाली बात होती
हो जाती है उनके साथ।
तो ऐसे में अगर कोई आदमी अपनी बीमारियों से जूझ रहा है और उसके पास अगर कोई सोशल सिक्योरिटी जैसा अलाउंस नहीं है, तो हम लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, अगर इंडिया में हम वास्तव में सीरियस हैं कि हमारे यहाँ पर भी जो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन 80-85 ईयर्स हो या 90 ईयर्स तक जाए, या जैसी हमारी वैदिक कॉन्टेम्पलेशन है 100 ईयर्स हो, तो अगर हम इसके बारे में, इन इश्यूज़ के बारे में सीरियस हैं, तो हमें अवश्य ही सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के बारे में बहुत गंभीरता से अभी से सोचना होगा, तभी हम इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन ले सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है वो बढ़ेगी और दूसरी बात ये आ जाती है कि सोशल सिक्योरिटी अलाउंस गवर्नमेंट ही अपने ऊपर उत्तरदायित्व क्यों ले। इसमें मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी खजाने में जो टैक्सेस होते हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो वर्कर्स जो हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं और फैक्ट्रियों में काम करते हुए प्रोडक्शन करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग टैक्स मिलता है। इसी तरह से जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस हैं, अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स हैं उनके अंडर भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस सेल टैक्स देती हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल और सर्विस टैक्सेस हैं और बहुत सारे अन्य भी तरीके हैं गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के। लेकिन जो प्राइमरी मोड ऑफ टैक्सेशन है मैन्युफैक्चरिंग टैक्स एंड ट्रेडिंग टैक्स, जो टैक्सेस उसके पीछे लोगों की काम करने, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये टैक्सेस की कलेक्शन होती है। अगर उन टैक्सेस को सारा ही अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर देते हैं, हम वर्ल्ड क्लास भी मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन लोगों की फिजिकल नीड और उनकी हेल्थ और उनके वेलफेयर के बारे में हम ध्यान नहीं देते तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हो जाएगी। हम बहुत हाई क्लास, अगर हमारे पास हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन हमारे यहाँ की जनता अगर दुखी नहीं है, जनता अगर दरिद्र में है, जनता दुखी है और बीमारियों से जूझ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये होलसम और एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट नहीं होगी। इसलिए मेरी ये बहुत विनम्रता से ये मेरा निवेदन है, मान्यता है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 15% जो हमारे टैक्सेस की कलेक्शन है जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में की डेवलपमेंट में खर्च करने जा रहे हैं उसमें से ये सोशल सिक्योरिटी की तरफ इसका डाइवर्शन होनी चाहिए।
जी, यानी सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है और इसको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए ताकि लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को वो आराम मिल सके जो अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। मोहित जी, अभी आपने बताया कि इसकी वाकई में ज़रूरत क्यों है और किस तरीके से इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, और क्या खास कदम उठाए जा सकते हैं, क्या वाकई हमारी सरकार इसको शुरू कर सकती है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और क्या किसी देश में सोशल सिक्योरिटी अलाउंस मुहैया कराया गया है अब तक या नहीं?
देखिए, अर्थशास्त्र के मुताबिक किसी भी कंट्री की या सोसाइटी की डेवलपमेंट की तीन स्टेजेस होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड एंड हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। मैं ये समझता हूँ कि अब हम अपने कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री तो नहीं कह सकते, और कुछ समय पहले इसे डेवलपिंग कंट्रीज में माना जाता था, लेकिन अब हम लोग आगे चल रहे हैं, एक डेवलप्ड और हाईली डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में, श्रेणी में हम लोग आने जा रहे हैं। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अच्छे कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ की इकॉनमी साउंड है, वहाँ पे ऐसा सोशल सिक्योरिटी अलाउंस का प्रावधान है, जैसे ब्रिटेन में है, कनाडा में भी है, यूएस में भी इस तरह से प्रावधान है। इसी तरीके से इंडिया भी अगर डेवलप्ड और हाईली डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आना चाहता है तो इंडिया को भी इस तरह की, अभी से हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदल के इस डायरेक्शन में, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए।
यानी जब जनता खुश रही, जब जनता को सारी सहूलियत मिलेगी तो वाकई देश भी आगे तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तभी देश उन बेशुमार देशों की लिस्ट में शामिल हो सकेगा जो तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, सर आपसे अब जानना चाहूंगी, हमारे देश के अलग अलग भागों में हर जगह पर बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड डाउनट्रोडन लोगों को दिए गए हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको खाना वगैरह, राशन जो है वो सस्ते में मुहैया कराया जाता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है या कुछ चीजें बहुत कम कीमत पे मिलती हैं, तो ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि वाकई सोशल सिक्योरिटी अलाउंस की जरूरत है?
देखिए दीक्षा जी, कि जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में राशन का सवाल है या राशन कार्ड फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट बने इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, वेलकम, गवर्नमेंट ने, कल्याणकारी राष्ट्र ने गरीब लोगों के बारे में बहुत अच्छी ये पहलकदमियाँ की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डे टू डे नीड्स की कि आपको कुछ फाइनेंशियल लिबर्टी हर इंडिविजुअल को माइक्रो लेवल के ऊपर देनी होगी, क्योंकि अगर आप लो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है, अनाज दे रहे हैं, लेकिन अनाज से ही तो सारी जो है नीड्स पूरी नहीं होती
जी जी।
तो आप अगर थोड़ी सी भी इसमें हम लिबर्टी भी साथ में देना चाहते हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है अनुच्छेद 21 में, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर हम, वो तो ठीक है जो चल रहा है, उसके अलावा अगर हम सोशल सिक्योरिटी अलाउंस को इंट्रोड्यूस करें तो हर व्यक्ति अपनी नीड के अनुसार, ना कि आपको 5 किलो गेहूं ही मिलेगा या 10 किलो गेहूं ही मिलेगा, चाहे वो आपकी फिजिकल नीड को सूट करता है या
नहीं करता। जी जी।
तो आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आप किस तरह का भोजन खाना चाहते हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो इस तरह से जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको हम ज़्यादा सक्षम तरीके से लोग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी अगर हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पैसे अगर हम देते हैं।
जी जी जी। यानी वो जो चाहे वो अपने घर के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं ही मिलेगा। अगर वो नहीं चाहता गेहूं या कुछ और चाहता है, या वो चाहता है कि उसे बाकी राशन की चीजें ज्यादा मिले, तो वो सब वो उन पैसों में खरीद सकता है।
हाँ जी।
मोहित जी, अब ये जानना चाहते हैं कि खाने वगैरह की तो बात हमने करी है कि राशन लोगों को सही समय पे मुहैया कराया जाए, उसके लिए अलाउंसेस दिए जाएं, लेकिन घर का क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप स्लम एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है हिंदुस्तान की, तो इस चीज को ठीक करने के लिए काफी योजनाएं चलाई तो जा रही हैं, लेकिन वो योजनाएं इतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई हैं अब तक। इतने लोगों को घर नहीं मिल पाए हैं जो वाकई स्लम्स में रह रहे हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि एक तरफ आपने बहुत हाई क्लास जो है ब्रिजेस, डैम्स और हाईवेज और रोड्स और कुछ अर्बन सेक्टर्स आपने डेवलप कर दिए, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी भी शहर में बहुत सारी पॉपुलेशन अगर स्लम एरियाज में है, तो कभी भी जो डेवलपमेंट है वो होलसम डेवलपमेंट होगी तो वो सस्टेन करेगी। उस एरिया का जो भी पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, या उस एरिया की जो सीवर लाइन नहीं है, तो उनका जो वाटर है वो आपकी सड़कों के ऊपर पानी आ जाएगा, या आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सीवर लाइंस डाली हुई हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उस लाइन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे इलीगल तरीके से, तो वो लाइंस आपकी भी चोक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा देखा गया है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये रियलाइजेशन आई कि जब तक कि हम होलसम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते, तो मेरी ये मान्यता है कि जो भी गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी हम टैक्सेस की डाइवर्शन करते हैं, तो उसमें जब भी हम डैम्स, ब्रिजेस और रोड्स की प्लानिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें हाउसिंग को भी बहुत समग्रता से लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल, जैसे कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, अगर उसने 10 साल सर्विस की है, ऑनेस्टली वर्क किया है, तो कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि उसे कम से कम एक रूम का घर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे देने के लिए। अगर किसी की 20 ईयर्स की सर्विस है, तो उसे 2 rooms हाउस जो है उसके लिए फैसिलिटेशन होनी चाहिए। 30 ईयर्स की सर्विस के बाद 3-bedroom हाउस की फैसिलिटेशन हो, 40 ईयर्स के बाद 4-bedroom हाउस की फैसिलिटेशन हो। ऐसा करने से कंट्री के अंदर वर्क कल्चर और लोगों में काम करने की जो भावना है वो ज़्यादा होगी, कि जब भी आप काम करेंगे तो आपको ये मतलब इसका प्राइस मिलेगा। तो लोग, ताकि अपनी एनर्जीज को इधर उधर लड़ाई झगड़े में और समय बर्बाद करने में मतलब उसका इस्तेमाल ना करें। और इवन 5 years की सर्विस के बाद, जैसे कोई सेमी परमानेंट हाउसिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह के सेमी परमानेंट हाउसेस हट्स से जो बेटर होते हैं, मतलब इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर साइजेबल अमाउंट अगर हम अपना टैक्सेस का जो है उसमें हाउसिंग डेवलपमेंट में, लोगों की फैसिलिटेशन में और उनको इजी इंस्टॉलमेंट में, ऐसा है भी, हुआ भी है पहले, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार ऐसा प्रपोजल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट्स ने बहुत बार ऐसी स्कीम्स को, बहुत से गवर्नमेंट्स, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा लेकर आई हैं, लेकिन इस विषय में जैसा कि आपने कहा कि देखने में अभी भी बहुत ज़्यादा स्लम्स नज़र आते हैं, तो उससे फिर ये साबित होता है कि हमें और भी बहुत बहुत मेहनत से और बहुत लगन से और अनफ्लिंचिंग फेथ और निष्ठा से कि चलिए कुछ किया तो कुछ हुआ भी और कुछ नहीं हुआ भी जो नज़र आ रहा है, तो आने वाले 20 साल में या 30 साल में हमें और ज़्यादा मतलब पक्के इरादे से इस विषय में काम करने की आवश्यकता है। तो उससे ताकि सभी लोग बहुजन सुखाए, बहुजन हिताए की जो फिलॉसफी होती है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी, सभी लोग अपना बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकें और हमारे कंट्री में जो हम राम राज्य कहते हैं कि हम राम राज्य की तरफ जो है जाने की संभावना पैदा कर सके।
जी बिल्कुल, बहुत सी बातें बता रहे हैं एडवोकेट मोहित भंडारी जी कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी अलाउंस लागू होने के बाद कितना फायदा पहुंचने वाला है देश की आम जनता को, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं अगर इसमें सही तरीके से काम नहीं किया गया तो। क्या हो सकते हैं दुष्प्रभाव, ये भी हम जानेंगे। मोहित जी, अब आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं। आखिरी सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हम सरकार जो है वो आम जनता को दे, खासतौर पर से डाउनट्रॉडन लोगों को ले, लेकिन कहीं पर ये परेशानी भी आ सकती है कि लोग इस पैसे का जायज फायदा उठाएं, क्योंकि जब किसी को पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं काम ना करने की भावना उसमें आ जाती है या फिर पैसे का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अगर एक परिवार को लगभग 3,500 के आसपास अमाउंट दिया जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी कर सकता है।
देखिए, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, अब जैसे मान लीजिए मिनिमम वेजेस हरियाणा में 7,000 की अप्रोक्सीमेशन में है, तो कोई भी व्यक्ति फिर काम छोड़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो काम करेगा तो वो 7,000 के अराउंड या अबव 10,000 रुपीज़ कमा सकता है। सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेज इसीलिए जनरली 40% के करीब रखे जाते हैं कि उसे मालूम है कि अगर मैं इसी पे रहूँगा तो फिर तो मैं सिर्फ अपना खाने लायक ही गुजारा कर सकता हूँ, और वो कोई भी व्यक्ति उसे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम तो करना चाहता ही है अपनी फैमिली नीड्स को देखते हुए। लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि इसमें कहीं ना कहीं इसका अब्यूज़ या मिसयूज़ भी हो सकता है, देखिए कारें चलती हैं रोड्स के ऊपर, उनके एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि कारों की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाए। हम लोग घर में सब्जी काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, तो चाकू से कभी हाथ भी कटने की संभावना होती है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उनका जो है यूज़ को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से जो स्कीम्स और पॉलिसीज़ होती हैं उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो उनके गेंस हैं, वो मच लार्जर होते हैं देन दी नेगेटिव एंड मिसयूज़। और मिसयूज़ के बारे में सर्टनली पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, जैसे कोई भी आदमी अगर दुरुपयोग करता है सोशल सिक्योरिटी अलाउंस का, कि वो जॉब में होते हुए भी अगर सोशल सिक्योरिटी अलाउंस को अवेल कर रहा है और 18 साल की आयु के बाद भी कोई अनाथ बच्चा है अपनी उम्र को गलत बता के अवेल कर सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पीनल एक्शन के भी प्रावधान किए जा सकते हैं और कुछ ना कुछ उनको डेप्राइवेशन की जा सकती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतने साल के लिए ये जो है फैसिलिटी जो है डिसएबिलिटी रहेगी इसमें आपको, कि आप ये सुविधाएं जो हैं 5 साल के लिए या 3 साल के लिए आप फिर ये सुविधाएं इस्तेमाल नहीं कर सकते या 10 साल के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के डिसएबिलिटी क्लॉजेस भी हो सकती हैं और पीनल क्लॉजेस भी कानून में लाई जा सकती है ताकि लोग उसका दुरुपयोग ना करें। हाँ जी
जी, तो फिलहाल सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया है एडवोकेट मोहित भंडारी जी ने। मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में, और बहुत सारी बातें आपने बताई, और हम आशा करते हैं कि इन खास अलाउंसेस से जनता को बहुत सारी सहूलियत मिल सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए।
थैंक यू, धन्यवाद।
तो बहुत सी बातें हम कर चुके हैं सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के बारे में, और वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।